ओम शांति। बाबा ने कौन सी लहर फैलाने को कहा और क्या बनने के लिए? क्योंकि तीव्र बुरसात भी कुछ बनने के लिए करना है ना, तो वातावरण बनाओ कि हमें एक साल में, और जो बाबा ने दो मास का होमवर्क दिया उसमें वो पूरा करना है। बहुत अच्छी बात थी कि जैसे सेवाओं की लहर फैल जाती है, टॉपिक रख दिया एक भगवान एक विश्व परिवार, इस बार का टॉपिक है ये। तो सभी जगह इसकी लहर फैल गई, छोटे बड़े सेंटर इसके प्रोग्राम करने लगे, वैसे ही ये लहर फैल जाए, हमें बाप समान फरिश्ता बनना है, तो ये लहर तीव्र पुरुषार्थ कराएगी। लहर भी कुछ करा देती है ना, हमें उसकी प्लानिंग भी करनी है। लेकिन जो जहां जहां ये लहर फैला सके, ऐसा पावरफुल वातावरण बना सके, उन्हें बनाना चाहिए। अपने साथियों को जिनके परिवार ज्ञान में चलते हैं, परिवार वालों में, जो सेंटर में हैं तो सेंटर्स में, मधुबन में हैं तो अपने आसपास अपने डिपार्टमेंट में, हम एक लहर पैदा करें। हमें याद है हमने मधुबन में लहरें देखी हैं, वातावरण देखा है। बाबा एक एक मास को तपस्या वर्ष, अव्यक्त वर्ष के नाम से डिक्लेयर कर देते थे और ऐसे ही उसकी कुछ पॉइंट्स सुना देते थे। लहर फैलती थी, वातावरण बनता था, सब सोचते थे हमें करना है, तो उसकी बहुत अच्छी लिफ्ट सबको मिल गई। और सुनाएंगे कौन सी बात किसको अच्छी लगी। दो मास के लिए होमवर्क क्या दिया और स्वराज्याधिकारी, दो बातें बाबा ने विशेष रूप से दी हैं। स्वराज्याधिकारी, हम अपने राजा बन जाएं, कर्मेंद्रियों पर मन बुद्धि पर राज करें, कर्मेंद्रियों के अधीन न हो। सभी दूसरों का राजा तो बनना चाहते हैं, परंतु बनना अपना है, और जो अपना राजा बन जाते हैं वो स्वतः ही दूसरों पर राज सहज भाव से, दूसरों के दिलों पर राज करने लगते हैं। व्यर्थ संकल्प समय, इसके लिए कौन सी बात कही वो भी इम्पोर्टेंट है याद रखना। नहीं, व्यर्थ संकल्प से बचेंगे तो आगे चलकर और अभी संसार को मनसा शक्तियों की सकास देंगे। इसी साल बाबा की पहली मुरली में बहुत अच्छे महावाक्य है एक, व्यर्थ संकल्पों से स्वयं को मुक्त करो और समर्थ संकल्पों की चमत्कार देखो, कमाल देखो उनकी। तो बाबा ने कल बताया मन के राजा बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को यूज करते हुए मन को कैसे चलाओ, जैसे माताएं बोलो हाथ पांव को चलाते हैं ना, हमें सोचना भी नहीं पड़ता कि हम चला रहे हैं, इतना नेचुरल हो गया ना, हम सोचते भी नहीं और चलाते हैं, पर चलाते हम हैं। मन एक संकल्प करता है तब हाथ पैर या सारी कर्मेंद्रियां, मुख आंख नाक सब काम करती हैं। तो ऐसे हमें चलाना है, हम इन पे चर्चा करेंगे। और मेरा बाबा कहते हो तो कौन से अच्छे शब्द थे जिसपे तालीब बजाई, मेरे जैसा बनो तो, डायरेक्ट बोला ना भगवान ने, मेरे जैसा बनो। और बोलो किसको क्या अच्छा लगा, तीव्रता ले आओ, पुरुषार्थ नहीं, कौन सा शब्द जोड़ दो, तीव्र पुरुषार्थ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ, सभी सोचते तो हैं, शब्द जोड़ने से तो काम नहीं चलेगा ना, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात, हाँ ज्वालामुखी योग के लिए फिर से हमें अटेंशन दिलवाया, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात अलबेलापन समाप्त हो। सवेरे का योग भी बहुत पावरफुल हो, ऐसा नहीं फोटो निकाल ले कोई और दिखा दे और गड़बड़ हो जाए सारी, फोटो तो बहुत अच्छे आते हैं, मन का निकल जाए तो और वंडरफुल, वो बाबा के पास जाता है। तीव्र पुरुषार्थ, मान लो हमें क्लास में ही आना है और ठंड पड़ रही है, सवेरे मुरली में आना है और हम सोचें ठंडी बहुत है इधर ही सुन लेते हैं, क्या है मुरली तो सुनना है ना, इधर ही सुन लेते हैं, स्पीकर चल रहा है, ये ठंडा पुरुषार्थ, ठंडी ने ठंडा कर दिया। और तीव्र पुरुषार्थ माना कुछ भी हो हमें जाना, जैसे अब आप बैठे हैं ना, किसी को ठंडा नहीं हुई, योग भी किया है, ये तीव्र पुरुषार्थ। कोई हमें कमी काम कर रही है, हमें पता चल रहा है ये कमजोरी हमारा पीछा कर रही है, उसको जल्दी से जल्दी संकल्पों से, दृढ़ता से, योग की अग्नि से जल्दी से परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। तेज गति से चलना, योग हमारा 2 घंटे हो रहा है उसको 4 तक ले जाना, 4 हो रहा है उसको 6 तक ले जाना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। तो इन चीजों पर हम ध्यान देंगे। और क्या कहा बाबा ने शुरू में, क्या था, स्नेह की बात थी ना, बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे, बाप ने आज सभी के स्नेह को स्वीकार किया, कितनी सुखदाई बात है ना, हमारे स्नेह को, हमारे प्यार को भगवान ने स्वीकार किया, सुख मिलता है ना। और वो स्वीकार ही नहीं करता, रिटर्न में बहुत सारा स्नेह दे देता है। और स्नेह के साथ क्या चाहिए, तो केवल शक्ति नहीं, क्या जोड़ दो, शिव शक्ति और पांडव, पांडव पति साथ हैं, शिव के साथ शक्ति, शक्तियों के साथ शिव और पांडवों के साथ पांडव पति। और भी कुछ किसी को अच्छा लगा हो बोलो, याद करो कोई और बात अच्छी लगी हो, हैं? हाँ, उसको बाबा ने अप्रिशिएट किया और बाबा उस पर बहुत खुश हैं कि सेवाओं के फील्ड में भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टेज पर आ गए हैं। पहले देखो, सोचने की बात है, यज्ञ शुरू हुआ तो भगवान का विरोध, ब्रह्मा बाबा का विरोध, सब जो समर्पित हुए उनका विरोध, उनके बारे में गलत भावनाएं, ये सब खराब हैं, सबसे खराब लोग हैं तो ये हैं। आगे बढ़े, सेवाएं शुरू हुई तो क्या हुआ, ज्ञान का विरोध, तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, फिर भी बाबा का कार्य आगे बढ़ता रहा, वारिस निकलते रहे। और आगे बढ़े, बाबा व्यक्त हुए तो स्थापना के कार्य ने नया रूप ले लिया, विशेषकर जब से ओम शांति भवन बना था, स्थापना में गति बढ़ी और जब से ज्ञान सरोवर बढ़ा बहुत गति बढ़ गई। ज्ञान सरोवर एक वरदान बनकर हम सबको मिला जिससे बहुत गति बढ़ गई, तो नाम होने लगा, बहुत अच्छा काम ब्रह्मा कुमारियां करती हैं। कोई कहता जैसे और सब अच्छा काम कर रहे, ये भी अच्छा काम करती हैं। और अब कहां पहुंच गए, हाँ जो हम नहीं कर सकते वो ये कर रहे हैं। और अगला कदम है बस यही, और बाबा, तो बिल्कुल समीप आ गए ना, तो स्थापना का कार्य भी समीप आता जा रहा है। और बहुत सुंदर सब थे, आप सबके दिल को छू लिए होंगे। बाबा जब सबके दुख दर्द और पुकार सुनता है तो बच्चों द्वारा जल्दी समाप्ति करानी है, ये संकल्प होता है बाबा को। ये नहीं कहता मैं समाप्ति करा दूं जल्दी इस खेल का, किसके द्वारा? इसके रहस्य को हम सब समझते हैं, क्योंकि हमारी संपूर्णता समाप्ति कराएगी। हम संपूर्ण नहीं बने तो बाबा समाप्त करा के करेगा भी क्या? बाबा क्या करते हैं, राजा ही तैयार नहीं तो बाबा अपनी शक्तियों से राजा ही स्थापित कर दे तो राज कौन करेगा? तो सारा खेल हम सब की स्थिति पर आधारित है। हम पूर्वज हैं, आधार मूर्त हैं, आधार हैं हम सब सृष्टि के। अपनी इस ऊंचाई को सभी स्वीकार करें। हम साधारण नहीं, पूर्वज आधार। हमारा एक एक संकल्प दूर दूर तक काम करता है। आज मुझे कोई बता रहा था मक्का में, और मदर टेरेसा को भी ये बहुत अच्छी फीलिंग थी, मक्का में मुस्लिम्स को और मदर टेरेसा क्रिश्चियंस की, कि वो लोग फरिश्तों के आने की इंतजार कर रहे हैं। सोचो क्यों बाबा हमें फरिश्ते स्वरूप को धारण करने के लिए इतना जोर दे रहे हैं? तो उसके बहुत सारे बच्चे, सभी धर्मों में दुख तो बराबर बढ़ रहा है ना, वो कहीं कम नहीं है। भगवान के तो सभी बच्चे हैं ना, वो तो यहाँ धरती पर भेदभाव है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सब उसको याद करते हैं, सब उस तक ही अपनी पुकार आवाज पहुंचाते हैं। तो वो देख रहा है कि लोग फरिश्तों का इंतजार कर रहे हैं कि फरिश्ते आएंगे, हमारे दुख हरेंगे, हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, हमें भगवान के पास ले चलेंगे, स्वर्ग में, बहिष्ठ में, जो भी उनकी भाषा है, वहां हमें ले चलेंगे। तो हम इस बात की सूक्ष्मता को, महत्व को रियलाइज करें। फरिश्ता बनना विश्व कल्याण के लिए परम आवश्यक है। ये स्थापना का कार्य संपन्न ही इस तरह होगा। और हम सब ये भी समझ सकते हैं, समय की अपनी गति होती है। हम नहीं बनेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं कि समय की गति रुक जाएगी। बाबा कुछ ऐसी विधि अपनाएगा, है तो सब वो ड्रामा में, कि सभी ब्राह्मणों को वैराग्य हो और सभी तीव्र गति से संपन्नता की ओर चले। लेकिन पहले सुप्रीम टीचर होने के नाते वो हम सभी स्टूडेंट्स को उमंग दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, करो। क्योंकि जो इस समय कर लेंगे, बाबा ने बोला, क्या मिलेगा उन्हें? इनाम भी देंगे और बाबा की मदद भी बहुत मिलेगी। दो मास को बहुत अच्छी तरह सब अपने अंदर ये बात समा लें कि दो मास अगर हम सच्चे दिल से पूरा जोड़ लगाकर, बाबा कहा करते हैं बीसों नाखूनों का जोड़ लगाओ, ये हिंदी की कहावत है, अगर हम इन दोनों बातों पर ध्यान देंगे तो फरिश्ते बनेंगे और इसमें हमें बाबा की बहुत ज्यादा मदद प्राप्त होगी। इस मदद को हम रियलाइज करें, इसे स्वीकार कर लें। पसंद है सभी को? लेनी है बाबा की मदद? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल हम अपनी शक्तियों से, अपने उमंग उत्साह या दृढ़ संकल्प से नहीं कर पाते हैं। हर चीज के मार्ग में बाधाएं बहुत आती हैं। हम कहीं बिजी हो गए, पांच सात दिन बिजी रहे तो वो सब कुछ भूल जाता है, उमंग उत्साह दृढ़ता सब समाप्त हो जाती है। हम सब इस बात को जानते हैं, इसलिए निरंतर साधना, कॉन्स्टेंसी, निरंतर अभ्यास हमें चालू रखना है। दो मास के लिए सभी अपने कुछ अच्छे अच्छे नियम बना लें, जिनको किसी भी तरह मिस नहीं करना है, किसी भी कारण से, चाहे बहाना हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे हम बिजी हो जाएं, चाहे हमारे साथी व्यर्थ में रहते हो, बाह्य मुक्ता में रहते हो, चाहे माताओं को परिवार में कुछ बात हो, हर कारण को हटाकर हमें अपने कुछ नियम, विशेष दो मास के लिए, दो मास का समय लंबा नहीं होता, एक साल तो चलो बाबा नई नई बातें बताएगा, नई नई बातें आएंगी, लंबा हो सकता है, पर दो मास हम धुन लगाए, दो मास माना जब तक बाबा का सीजन है, जब तक बाबा आ रहे हैं। तो नियम कैसे बनाएं? विशेष रूप से टाइम वेस्ट न हो, बहुत बड़ी चीज है। बाबा ने भी कहा व्यर्थ संकल्पों में समय और शक्तियां, एनर्जी कितनी नष्ट होती है। थोड़ी देर भी किसी को व्यर्थ संकल्प चले, कैसे खुशी नष्ट हो जाती है, कैसे निगेटिविटी प्रवेश कर लेती है। उमंग उत्साह को नष्ट करने वाली सबसे बुरी चीज व्यर्थ संकल्प ही है ना। तो ये तो एक लंबी चौड़ी चर्चा का विषय है और हरेक को स्वयं में चिंतन करना है कि हम किस तरह के व्यर्थ से कैसे मुक्त रहें। व्यर्थ के अनेक कारण होते हैं, सो भी हो सकते हैं। हम चेक कर लें, इस पर सभी अपना अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करें, हम अपनी जांच कर लें, मेरे अंदर विशेष रूप से किस तरह, किस कारण से व्यर्थ चलता है। उसके लिए ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान की कोई पॉइंट हम अपने पास रखें, ड्रामा की कोई अच्छी पॉइंट अपने पास रख लें, बाबा की मदद की कोई अच्छा अनुभव की बात अपने पास रख लें, स्वमान की बातें रख लें, अशरीरीपन से व्यर्थ समाप्त होने लगता है, इन चीजों को हम यूज करें। सभी ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करके अपने कोई पांच कारण ढूंढ लें, ज्यादा नहीं, पांच, जिनके कारण मुझे संकल्प चलते हैं। सब अपनी अपनी चेकिंग करेंगे, अनुमान से चलते हैं, ईर्ष्या से चलते हैं, पर चिंतन के कारण चलते हैं, दूसरों को देखने की आदत है, या बच्चों की चिंताओं के कारण चलते हैं, या कोई जिम्मेदारी मुझे व्यर्थ की ओर ले चलती है, या कोई बीमारी मुझे व्यर्थ की ओर खींचती है, या कोई मेरा अपना स्वभाव संस्कार, अपनी इच्छाएं, अपनी समस्याएं मुझे व्यर्थ की ओर ले जाती हैं। ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं, हरेक उसमें अपने चेक करें। कोई विशेष विकार, कोई विशेष तरह की माया व्यर्थ का बीज है मेरे पास, किसी को दैहिक दृष्टि व्यर्थ संकल्पों को जन्म दे सकती है, किसी को कार्यों में असफलता, किसी को किसी भी तरह का भय, भय बहुत बुरी चीज है। आज बाबा साहब आज कह रहे थे, कल 108 तो अचल अडोल निर्भय बनेंगे ही ना, जो विनाश को देखेंगे, जो विनाश काल में महान कार्य करेंगे देने का। तो किसी को भय के कारण बहुत संकल्प चलते हैं, और भी छोटे छोटे कारण कुछ होते हैं, मुझे कई चीजें ख्याल में आ रही हैं। एक व्यक्ति आज कह रहा था, हमारे कमरे में ही आ गया, उसको वस्तु कला का बहुत ज्ञान है, तो मुझे बता रहा था आगे छोटा सा किचन बनाया है कि ये कवर करने से तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैंने कहा मैं तो भाई ध्यान दिया नहीं, होगा अच्छा लग रहा होगा, कुछ खराब तो है नहीं मेरे साथ। फिर एक मेरे पास और बैठा था, वो कहने लगा वास्तु कला का इफेक्ट होता है क्या, वास्तु दोष का। तो उसने बताया, देखो अभी आप यहाँ बैठे हो, अगर मैं एक सीनरी आपके लेफ्ट साइड में लगा दूं तो 5-10 मिनट में ही आपको परेशानी फील होने लगेगी, आप अनुभव कर सकते हैं। बिना मतलब आपकी खुशी नष्ट हो जाएगी, आपको कुछ करने की उमंग ही नहीं रहेगी। तो मैं देखा ये सब भी अननोन कारण, जिनका मनुष्य को पता नहीं चलता। ऐसे अननोन भय भी और अननोन कारण भी व्यर्थ के आधार बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं। तो हम अपने को चेक कर लें, कोई भी पांच बातें। किसी को व्यर्थ चल सकता है, किसी ने कुछ कह दिया, भाई प्रशंसा की तो बहुत खुश हुए, लेकिन किसी ने निंदा के दो शब्द बोल दिए, किसी ने कुछ निगेटिव कमेंट कर दिए तो संकल्प बहुत चलने लगे। किसी को संकल्प चलेंगे, एक्सपेक्टेशंस जो हैं, हमारी कामनाएं जो होती हैं, वो पूर्ण नहीं हुई। हमें कुछ इच्छाएं थी, कुछ पाने की इच्छा थी, कोई हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, कोई हमें रोक रहा है, मार्ग में अचानक दीवारें आ रही हैं, वो व्यर्थ संकल्पों को जन्म देती हैं। हम इन सब को समाप्त करेंगे। कहने से समाप्त नहीं होगी, इससे भी समाप्त नहीं होगी कि मुझे समाप्त करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ज्ञान का बल, विशेष स्वमान का बल, एसदीदीपन का बल और बाबा के साथ होने का पावरफुल नशा। ड्रामा की कुछ बातों को सभी ले लें। देखो, मेरे पास माताएं आती हैं बहुत, माताओं को अपनी समस्या नहीं, बच्चों की समस्याएं, और बच्चों की समस्याओं के कारण माताएं परेशान बहुत होती हैं, स्थिति डाउन रहती है, चिंताओं में जीवन बीतता है। दोनों चीज है। एक हम याद रखेंगे, माताएं ध्यान से सुन लें, आपके घर में जिन बच्चों ने जन्म लिया है वो सब अपना अपना भाग्य लेकर ही आए हैं। उनके साथ भी उनके 2500 साल के पाप कर्मों का खाता है। अब तो वो आपके बच्चे हैं ना, आपके पोतरे हैं छोटे से, आपके घर में छोटे से बच्चे हैं, आपका उनसे मोह हो जाता है, आप चाहते हैं ये सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, ये सब अच्छी बातें हैं, परंतु उनका अपना भी तो उनका पीछा कर रहा है ना। इसलिए सबका अपना अपना भाग्य है। इससे अपने चित्त को शांत करें और चित्त शांत करने के बाद अपने कर्तव्य करें। दोनों चीज छूट जाती है माताओं की, न कर्तव्य कर सकते न चित्त को शांत कर पाती, परेशान रहने लगती हैं। जो पोतरा अभी तक था नहीं घर में, पिछले साल जन्म लिया है, उसके कारण माता की स्थिति डाउन, 20 साल से ज्ञान में है, अब एक साल से जो एक छोटे बच्चे ने घर में जन्म ले लिया, सब बिगड़ गया। हो रहा है नहीं बहुतों के साथ? 20 साल आनंद पूर्वक बिताए, 3 साल से कोई आत्मा घर में आ गई, उसके कारण सारी खुशी, सारी शांति, सब कुछ चली गई। इन सब बातों में ये बढ़ रहा है, ये कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आत्माएं लंबे चौड़े पाप कर्मों की गठरी लेकर हर घर में जन्म ले रही हैं। ले रही हैं या नहीं? मेरे शब्द खराब तो नहीं लग रहे? सत्यता तो यही है। इसलिए साक्षी भी होना है, हल्के भी रहना है और कर्तव्य भी करना है। और माताओं का सबसे बड़ा कर्तव्य है, ये जानते हुए कि ये पाप कर्मों की भारी भारी गठरी लेकर आई हैं आत्माएं, उन्हें पावरफुल वाइब्रेशंस दो, 10-20 मिनट उनके लिए निकालो, तो उन आत्माओं को भी जीना सहज हो जाएगा और आप भी हल्के रहकर अपना पुरुषार्थ कर सकेंगे। बाबा हमारे साथ है, कुछ बातों में हम इससे निर्भय, निश्चिंत, बेफिकर बादशाह हो जाएंगे। कल बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा, जिम्मेदारी होते हुए भी हमें तो लगता है ना कि बाबा जब थे तो छोटी छोटा यज्ञ था, थोड़ी सेवाएं थी, परंतु ऐसा नहीं।
अब आप सोचो 380 बच्चे बाबा के साथ रह रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो 2 साल 5 साल 8 साल के बाबा के पास आ गए, वो एक जैसे लौकिक बाप की तरह उनके लिए रहा है और घर में खाने को कुछ नहीं है। सोचो क्या स्थिति होगी मनुष्य की। बीमार पड़े हैं लेकिन पैसा नहीं है कि उन्हें दवाई दिलाई जा सके, क्या स्थिति होगी। ऐसे में सेवा बाप पर पूर्ण विश्वास, उस पर अचल अडोल, उसकी शक्तियों में एक बल एक भरोसे रहना, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिम्मेदारी जिम्मेदारी। एक परिवार में आप सोचो, माताएं भाई सोचें, आपकी कन्या जरा सी कुछ गड़बड़ कर दे, आप घर से बाहर नहीं निकलते मुंह दिखाने, लोग क्या कहेंगे। और बाबा के इतने बड़े यज्ञ में कितने लोग बाबा को छोड़कर चले गए, ग्लानी होने लगी, देखेंगे अब दादा का कैसे चलेगा। उन्हें थोड़ा ही पता था कि दादा के ऊपर भी कोई है, वो उन्हें पता था। कितनों ने जाकर शादी कर ली, कितनों ने जाकर ग्लानी भी की, ऐसा तो नहीं ना सबने महिमाई की होगी। जो छोड़ के जाता है यज्ञ को, वो ये थोड़ा ही कहेगा मैं अपनी कमी से छोड़ के आ गया हूँ, वो तो कहेगा फलाना ऐसा था, बाबा ऐसा करता था, मामा ऐसी करती थी, वो तो कुछ कहेगा ना। लेकिन इन सब में बेफिक्र रहना, अचल अडोल रहना, बिल्कुल हल्के रहना, सबको संभाल के रखना और सेवाओं के फील्ड में सबको भेज देना, कितनी बड़ी चीज थी। कोई बाप अपने बच्चे को भेजे कि अहमदाबाद चले जाओ, कहां जाओ ये पता नहीं, जाओ, चिंता हो गया नहीं। जानकी दादी सुनाया करती है, 5 रुपए दिए बाबा ने, 5 रुपए, 3 रुपए था अहमदाबाद का किराया, बचे 2। अब सोचो यहां से नीचे भी जाना है, आगे स्टेशन पे जाके भी कहीं जाना है, 5 रुपए, कहां जाना है ये पता नहीं, जाओ बच्ची अहमदाबाद में जाके सेवा करो। सोचो आप आगे एक बाप के मन में क्या क्या हो सकता है। यंग कन्याएं जा रही हैं, लेकिन फिर भी बेफिक्र, कौन भेज रहा है। जिस जो भेज रहा है उसने पहले इंतजाम कर दिया होगा, स्टेशन पर ही कोई आ जाएगा और ले जाएगा, उसे पता है, उसे विश्वास है बाबा की शक्तियों में, इसलिए बेफिक्र बात साथ है। और वही होता रहा। वो सब बहने जो यंग थी ऐसी शिव शक्तियां बन गई कि भगवान को भी उन पर गर्व रहा, बाबा को गर्व रहा, निश्चिंत कर दिया उन्होंने बाबा को। तो ऐसे बाबा की शक्तियों में विश्वास हमें बेफिक्र बनाएगा, निश्चिंत रखेगा, अनेक व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखेगा। इस पर सभी काम करेंगे, ये याद रखेंगे अपने पास अच्छी तरह कहीं लिख कर रख लो, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाओ और श्रेष्ठ संकल्पों की कमाल देखो। बाबा ने डिफाइन कर दिया है, जब तुम व्यर्थ संकल्प से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो वही तुम्हारी संपूर्णता होगी। अब समय हमको व्यर्थ से मुक्त कराएगा, परिस्थिति व्यर्थ से मुक्त कराएंगी, परिस्थिति भी कराएंगी। ऐसा समय आ जाएगा कि व्यर्थ सोच के कुछ होगा नहीं, लोग सोचना छोड़ देंगे। हमने सुना होगा जो बुजुर्ग हैं, पहले गांव में महामारी चलती थी, एक मरा उसको शमशान में जला के आ रहे, रो रहे लोग, दूसरा मर गया, इतने वापस आए, अब उसको ले जा रहे, लकड़ी भी नहीं मिल रही, उसको जला के आ रहे, रो रहे, तीसरा मरा, मर रहे हैं 10 20 50, लोगों ने रोना ही छोड़ दिया, वो काम हो गया, भाई मर रहे हैं इनको जलाओ, मर रहे हैं जलाओ। जिनके परिवार वाले थे उन्होंने भी रोना छोड़ दिया। तो जब विनाश तीव्र गति लेगा तो लोग सोचेंगे अब सोचने से क्या फायदा होगा, इसलिए सोचना ही बंद कर देंगे। इसलिए सुख लेने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों का सुख है बहुत बड़ा, उनमें बल भी बहुत बड़ा है। अपने को ज्ञान बल से और इन सब तरह के उपायों से जितना हो सके मुक्त करते चलें। ये तो सब जानते हैं कि ये काम कोई एक दो दिन का या दो मास का नहीं है, ये लंबी साधना है, लेकिन हम ये चेक करें, इस ओर बढ़ें कि हमारे व्यर्थ संकल्प दिनों दिन कम हो रहे हों। कुछ चीजों को बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दें, अनुमान लगाना नहीं है, ईर्ष्या करनी नहीं है। जो आगे बढ़ रहे बढ़ने दो ना, हम क्यों परेशान, वो आगे बढ़ रहे हम दुखी हो रहे हैं, फायदा चिंतन करो। ऐसे मैं एक बहुत अच्छी बात मनोवैज्ञानिकों की आपको सुनाऊं, बहुत सूक्ष्म है, आप सब अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और खुद भी सीख सकते हैं। मान लो एक व्यक्ति को बहुत सफलता मिल रही है, एक व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम उसकी ग्लानी कर रहे हैं, उसे ईर्ष्या कर रहे हैं, जो कॉमन रूप से लोगों में होता है। तो क्या हो रहा है, सूक्ष्म रूप से हम उस व्यक्ति की ग्लानी नहीं कर रहे हैं, हम सफलता की इंसल्ट कर रहे हैं। तो सफलता हमारे पास आएगी नहीं। आप देख सकते हैं संसार को, आप अपने जीवन पर दृष्टि डाल सकते हैं, जिसने दूसरों के लिए, दूसरों को आगे बढ़ते देखकर ईर्ष्या रखी, वो कुछ नहीं कर पाए, वो आगे बढ़े ही नहीं, क्योंकि वो उनकी सफलता का, उनकी प्रोग्रेस का अनादर कर रहे थे। उनकी नहीं, सफलता और प्रोग्रेस का, ये दोनों महान उपलब्धियां हैं ना, तो वो उनके पास क्यों आएंगे जो उनका अनादर कर रहे हैं। वो तो उनके पास आएंगे ना जो उन्हें चाह रहे हैं, जो उनको वेलकम कर रहे हैं। ध्यान देंगे आप इस बात पर, तो कुछ चीजों पर फाइनली फुल स्टॉप लगा दें, ये नहीं, पर चिंतन नहीं। हम पर चिंतन के लिए थोड़ा ही आए हैं, ड्रामा में जब सबका अपना अपना पार्ट है तो भला हमारे पर चिंतन से लाभ क्या होगा, क्या हमारे पर चिंतन करने से हम या दूसरे बदल रहे हैं। चिंतन करें, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है पर चिंतन, तो सब आगे बढ़ें। देखो आगे वही बढ़ सकता है जो ये भावना रखे, सब आगे बढ़ें, सबका कल्याण हो, सब एकदम सफलता को प्राप्त कर ले, सबका नाम हो जाए। अब देख ले इस बात पर, जो व्यक्ति ये सोचता है केवल मेरा ही नाम हो, दूसरों का नहीं, दूसरों के नाम में बाधक बनता है, उसका नाम कभी नहीं हो सकता। अगर हमें अपना भी नाम चाहिए तो हम ये संकल्प कर ले सबका नाम हो जाए। हमारे परिवार में सबका नाम होता है ना, अब देखो शिवानी बहन टीवी पर आस्था पर प्रोग्राम देती है, नाम किसका हो रहा, सबका हो रहा है ना। हम लोगों को सम्मान देते हैं लोग ट्रेन में, टीटी जो देखते हैं वो हमारा टिकट कुछ नहीं पूछते, पास यस टिक की आगे बढ़ो। हम सामान उठाने लगते हैं, चार लोग आके हमारा सामान उतार देते हैं। मैं प्लेन में जाता हूँ, वो सब भी देखते रहते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर जो चेक करते हैं, जाते ही कहेंगे ओम शांति, कैसे ठीक हैं, कहाँ जा रहे हो, आबू से आए हो, तो किसका नाम हुआ, हुआ ना हम सबका। तो सब आगे बढ़ें और ध्यान देंगे सभी स्वराज अधिकारी पर, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। बाबा ने कल भी कहा, पहले भी कहते हैं, दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं जिसके सभी बच्चे राजा हों। बाबा को नशा है, देखो कितनी अच्छी बात है कि मेरे सब बच्चे राजा हैं। तो हम, ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मन बुद्धि के राजा बने। मैं आपको छोटी सी विधि बता देता हूँ, मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए, इसके बहुत फायदे हुए और सबको होंगे। कल बाबा ने कहा चेक करो, ये बाबा कहते रहे पहले दरबार लगाओ रोज रात को, पीछे आपको याद हो बाबा ने कहा अपने मन को रोज काम दे दो, शाम को उससे पूछो ये किया या और कहीं गए थे, तो मन को भी ख्याल रहेगा मेरा मालिक मेरा चार्ट लेगा रात को, मन डरेगा कुछ करते हुए। तो बहुत अच्छी विधि है, हम सभी ये अभ्यास करें, मैं आत्मा अपने स्वरूप को देखें, मालिक हूं। हम सब अच्छी तरह ज्ञान से जानते हैं, मैं देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूं। इस फीलिंग को बढ़ाते चलें, मैं मालिक हूं। हम अपनी मन और बुद्धि से बात करते रहें, मन बुद्धि को दो छोटे बच्चों के रूप में सामने खड़ा किया करें और दोनों से बात करें, हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, मैं तुम्हारी मालिक हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं। अब तुम्हें ये नहीं करना है, ये नहीं सोचना है, यहाँ नहीं जाना है, शांत हो जाओ। हे मेरे मन, तुम बहुत चंचल रहे हो, बहुत चंचल हो गए हो, अब चुप हो जाओ। माताएं बच्चों को कहती होंगे ना, दो मार के बहुत चंचल हो गए, बैठिया नहीं तो बांध दूंगी। मन को भी कह दो, तुम बहुत चंचल हो गए हो, अब बैठो यहाँ। रोज अपने को ये गुड फीलिंग सबको देनी है। बुद्धि बहुत अच्छी चीज है हमारी। तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र। मैं सोच रहा था, देखो सभी आप सोचेंगे और सभी इस बात को जानते हैं, जरा विचार करें, सतयुग में जब हम हैं तो हमारा जो ये ब्रेन है, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, संपूर्ण खाली है ना। अब क्या है बुद्धि में, मन में, ब्रेन में? मैं छोटी सी बात बताऊं आपको, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अंतर मन, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। इसमें अनकॉन्शियस माइंड जो है उसका उन्हें कुछ पता नहीं चलता क्या है ये, लेकिन वो ऐसा महसूस करते हैं इस अनकॉन्शियस माइंड से कुछ बैड वाइब्रेशंस आते रहते हैं मन को सदा। अब हम जानते हैं ये अनकॉन्शियस माइंड किसे कह दिया उन्होंने, आत्मा में जो ये टोटल भरा हुआ है ना। अब हम चारों युगों का न कह के द्वापुर से कहें, द्वापुर से जो बहुत माल भरा है ना, जो जागृत तो नहीं है, मैं उसे माल ही कहूंगा, खराब माल, तो उससे बैड एनर्जी निरंतर माइंड को आती रहती है, मन की दिशा को बदलती रहती है, कभी उसे अशांत करेगी, कभी उसकी खुशी ले जाएगी, कभी परेशानी पैदा करेगी। सबकॉन्शियस माइंड में स्मृतियां हैं, अच्छी बुरी, द्वापर युग है। अब सोचो सतयुग के पहले जन्म में ये दोनों ही चीज नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल खाली, संपूर्ण स्वच्छ, तो हम कैसे होंगे? वही स्थिति अब अंत में हमारी आनी है, जब हम अपने विकर्मों को नष्ट करके अपने अनकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल खाली कर देंगे, स्वच्छ, और सबकॉन्शियस माइंड में पावरफुल स्मृतियां, स्वमान की स्मृतियां भर लेंगे। तो वही जो पहले जन्म का हमारा स्वरूप है वो अब तेजी से निखरता जाएगा, प्रकट होता जाएगा। तो हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, मैं स्वराज अधिकारी हूं, इससे ही मन के व्यर्थ संकल्पों को रोकने में मदद मिलेगी। और बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लें, संभालें अपने अंदर, मैं स्वराज अधिकारी हूं, तो मेरे पास ही मन को कंट्रोल करने की शक्ति है, मन की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर मेरे पास है। जैसे रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो, कंप्यूटर का भी हमारे हाथ में होता है, हम जैसे चाहे चलाते हैं ना, जैसे बाबा ने हाथ पांव को चलाने की बात कही, तो ये दोनों चीजें अपनी बुद्धि में समाते चलें। ये भूली रहती है हमें कि मन को कंट्रोल करने की पावर, रिमोट कंट्रोल मेरे पास है और मैं मालिक हूं। जैसे जैसे हम इस अभ्यास को बढ़ाएंगे, हमारा मन हमारे कंट्रोल में आता जाएगा, अपनी बुद्धि को हम काम दे सकते, बहुत अच्छा अनुभव सभी करेंगे। मूल्य के समय या सवेरे ही अपनी बुद्धि को स्वराज अधिकारी बनकर काम दे देना कि जो भी खराब बातें हैं उन्हें तुम स्वीकार नहीं करना, साथ साथ बाहर फेंक देना, रिजेक्ट कर देना, केवल श्रेष्ठ बातों को ही ग्रहण करना। तो हम काम दे देंगे ना, एक कंट्रोलिंग पावर हमारे पास है, तो हमारी बुद्धि कुछ भी गलत होगा उसे स्वीकार ही नहीं करेगी, लेगी नहीं अपने अंदर। इस तरह हमारी बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी। तो बहुत अच्छा ध्यान देंगे मुरली, जैसा हम हर बार कहते हैं और सभी करेंगे, मुरली से, इस मुरली से कम 10 अच्छी पॉइंट कल ही अलग से लिख के रख लेना, जो आज कर सके आज करना, और उनको बीच बीच में पढ़ते रहना। हर मुरली में कुछ ऐसी पावरफुल बातें बाबा हमें कहते हैं जिसको याद करते ही हम में जागृति आ जाती है। उन्हें हम अलग से नोट करें, उन्हें हम पढ़ते रहें, तो बातें हमारे लिए वरदान बनती जाएंगी। तो इस मुरली से क्या क्या प्रेरणा हम लेते हैं, किसी को कोई बात अच्छी लगती है, किसी को कोई लगती है, उन पर विशेष ध्यान देंगे। ओम शांति।